हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। काली शक्तियों के गुरु के पास अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, इसीलिए वो उसका पता लगाना चाहते थे। उन्होंने शीघ्र ही पता लगा लिया था कि जंगल में ही उनका काला नाग पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। जैसे ही काली शक्तियों के गुरु ने काले नाग को पत्थर की मूर्ति में देखा, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उनके महाशक्तिशाली नाग को पत्थर का बना दिया था। इसीलिए काली शक्तियों के गुरु ने उसके बारे में जानने की ठान ली थी। वैसे भी जब काली शक्तियों के मालिक अमित ने विक्रांत रंधावा के बारे में जानने के लिए अपने गुरु से कहा था, तब भी वो विक्रांत रंधावा के बारे में कुछ खास नहीं जान पाए थे। इसीलिए काली शक्तियों के गुरु को अंदेशा हो गया था कि कहीं उनके महाशक्तिशाली नाग के पत्थर बनने के पीछे विक्रांत रंधावा का हाथ तो नहीं है। काली शक्तियों के महागुरु ने फिर से कड़ा तप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हर हाल में वो उसका पता लगाना चाहते थे जिसने उनके महाशक्तिशाली नाक को पत्थर का बना दिया था। जल्दी ही विक्रांत रंधावा की माँ का चेहरा उनके सामने आ गया, क्योंकि विक्रांत रंधावा की माँ भी अपने बेटे के जाने के बाद फिर से तप में बैठ गई थी, इसीलिए उन दोनों का तालमेल हो गया था। वे दोनों आपस में बातें करने लगे। तब विक्रांत रंधावा की माँ ने कहा, मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा सिर्फ एक लड़की के प्रेम में पागल है, इसी वजह से उसने आपके महारक्षक को पत्थर का बना दिया है। मुझे आपका महारक्षक पत्थर का बनाना पड़ा है क्योंकि मैं आपके बेटे को परेशानियों में या हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। तब काली शक्तियों के गुरु ने विक्रांत की माँ से कहा, वो आपके महारक्षक को आज़ाद कर दें। उनका महारक्षक आपके बेटे को कुछ नहीं कहेगा और बस वो अपने बेटे के बारे में सारी बातें उन्हें बता दें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनका बेटा कौन है और यहाँ किस कारण से आया है। ये सुनते ही विक्रांत रंधावा की माँ ने काले नाग को, जिसे उन्होंने पत्थर का बना दिया था, ठीक कर दिया और अपने बेटे की सारी जानकारी काली शक्तियों के गुरु को दे दी। उसने बताया, मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक राक्षस है जो सिर्फ एक लड़की के प्रेम में पागल होकर यहाँ तक पहुँचा है। ये सुनकर काली शक्तियों के गुरु की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि वे उस राक्षस से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस राक्षस के पास जन्मों जन्मों से चली आ रही प्रेम की शक्ति थी। भले ही उस राक्षस का प्रेम तारापरी के जिस्म तक सीमित था, लेकिन उसका प्रेम एकदम सच्चा था। उसने उस प्रेम में तारापरी के जिस्म के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं था। यही प्रेम उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाता था। विक्रांत रंधावा की सच्चाई जानने के बाद काली शक्तियों के गुरु ने अमित को भी विक्रांत रंधावा की सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। इसीलिए उन्होंने कड़ी तपस्या करके एक काली चील को अमित के लिए संदेश भेज दिया था। वही अमित जो अपने महल जैसे घर से बाहर था, मल्लिका भी उसके साथ थी, क्योंकि वो मल्लिका को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। क्योंकि अमित को लग रहा था कि अगर मल्लिका ने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो डायन फिर से उसके पास आ जाएगी और उस पर हावी हो जाएगी। अब काली शक्तियों के मालिक अमित का भूत उतर चुका था। औरतों के जिस्म की चाह उसके मन में नहीं रही थी। उस एक्सीडेंट के बाद उसे लगने लगा था कि कब कौन सी औरत डायन या चुड़ैल निकल आए, किसी का क्या भरोसा। ये सोचते हुए अमित ने अब औरतों से दूरियां बना ली थीं। मल्लिका हालांकि उसके साथ थी, लेकिन मल्लिका को किस करने के बारे में भी उसने नहीं सोचा था। वे कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी काली चील वहां आ गई। काली चील को देखकर अमित समझ गया कि जरूर कोई संदेश आया है। जैसे ही उसने चील की चोंच में से कुछ मंत्र देखे, मंत्र पढ़ते ही उसे अपने गुरु का संदेश मिल गया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही मल्लिका ने ये देखा कि अमित काली शक्तियों के गुरु से मिलना चाहते हैं, उसने अमित से कहा, मैं भी काली शक्तियों के महागुरु से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? ये सुनकर अमित उसे हैरानी से देखने लगा। आज तक मल्लिका को वो काली पहाड़ी पर नहीं ले गया था, लेकिन आज मल्लिका ने खुद कहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचते हुए उसने मल्लिका को भी अपने साथ चलने की इजाज़त दे दी। वो अकेले नहीं जाना चाहता था, क्योंकि डायन वाले एक्सीडेंट के बाद से उसे अकेले रहना ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने मल्लिका को भी साथ चलने के लिए कह दिया था। मल्लिका मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अगर वो काली शक्तियों के गुरु से मिली और वो उससे इम्प्रेस हुआ तो हो सकता है कि वो उसे कोई वरदान दे दे जिससे उसे काफी फायदा हो और वो अमन को आसानी से पा सके। वो जान चुकी थी कि अमन विदेश की मीटिंग पर गया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अमन कहीं दूर नहीं गया है बल्कि अपने बगीचे में बैठकर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या का आज दूसरा दिन था। जल्दी ही काली शक्तियों का मालिक अमित और मल्लिका काली पहाड़ी की ओर निकल चुके थे। अमित इस बात से खुश था कि कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन कम से कम उस डायन से उसका पीछा तो छूट जाएगा। उसने अपने नौकर के हाथों डायन के लिए एक संदेश भेजा कि 3 दिन के लिए वो शहर से बाहर जा रहा है। ये संदेश सुनकर डायन का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसे हर रात किसी न किसी मर्द की जरूरत होती थी और अमित के साथ एक रात गुजारने के बाद उसकी ये चाह और भी बढ़ गई थी। इसीलिए जिस नौकर ने संदेश दिया था उसे उसने अपना शिकार बनाने के बारे में सोच लिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो नौकर एक जादुई नौकर था जिसे अमित ने अपनी शक्तियों से बनाया था। जैसे ही वो डायन नौकर के पास गई और उसे किस करने लगी, वो नौकर भी खुद को नहीं रोक पाया। भले ही वो एक जादुई नौकर था, लेकिन उसके अंदर भी जज्बात थे। जल्दी ही उसने भी डायन के कपड़े उतार दिए और उसे किस करने लगा। शुरुआत डायन ने की थी, लेकिन अंत नौकर करना चाहता था। जैसे ही वो नौकर उसके ऊपर आया और उसके जिस्म का स्पर्श हुआ, उसके अंदर का सारा जादू उस लड़की में चला गया और वो नौकर राख की तरह गायब हो गया। डायन को पता चला कि नौकर गायब हो गया है, लेकिन उसकी शक्तियाँ उसके अंदर आ गई हैं तो वो मुस्कुराने लगी। उसे तो शक्ति की जरूरत थी। अगर कोई गायब होता है या मरता है तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो नौकर उसके तन बदन में आग लगाकर चला गया था और इस वक्त उसे एक मर्द की कमी महसूस होने लगी थी। इसीलिए उसने हवेली के दूसरे नौकर को बुला लिया। जैसे ही उस खूबसूरत नौकर ने डायन का जिस्म देखा, वो भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी डायन को किस करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका जिस्म भी डायन के जिस्म से मिला, उसका जादू भी उसके अंदर चला गया और वो भी हवा बनकर गायब हो गया। एक एक करके कोई भी डायन को संतुष्ट नहीं कर पाया। गुड्डी डायन ने एक एक करके हवेली के सभी जादुई नौकरों को अपने पास आकर्षित कर लिया और उनके साथ संबंध बनाते ही वे गायब हो जाया करते थे। ऐसा करते हुए उसने हवेली के लगभग 10 नौकरों को गायब कर दिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। ये बात उसे अंदर तक जला रही थी, इसीलिए वो हवेली से बाहर निकलकर किसी आम इंसान को ढूंढने लगी। उसने सोच लिया था कि अगर इसकी प्यास ये नौकर नहीं बुझा पाए तो कोई ना कोई इंसान जरूर बुझाएगा। इसी तलाश में वो कम कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी ओर आकर्षित हों। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी और तारा परी ताली पहाड़ी के आसपास पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस पहाड़ी के आसपास पहुंचने पर उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था।
जैसे ही करिश्मा जी थोड़ा सा आगे बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कुछ है, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तारा ने भी करिश्मा जी से कहा, मॉम आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। तारा की बात सुनकर करिश्मा जी हैरान हो गई, लेकिन उन्हें बार बार अपने सामने किसी के होने का एहसास हो रहा था। तभी तारा परी ने करिश्मा जी से कहा, मॉम आप एक काम कीजिए, पहले आप मुझे जाने दीजिए, अगर वहाँ कुछ होगा तो मुझे जरूर पता चल जाएगा। तारा के कहने पर करिश्मा जी ने कहा, नहीं बेटा अभी मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है मुझे गलत फहमी हो गई हो, पर न जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सामने कोई बड़ी सी दीवार खड़ी हुई हो जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ। तब तारा परी ने करिश्मा जी से कहा, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। जैसे ही तारा परी थोड़ा सा आगे बढ़ी, उसे भी एहसास होने लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ अदृश्य है।